तो अभी हमारे साथ अनिल कुमार जी हैं। अरुण कुमार जी, पहले अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका क्या काम है और आप कहाँ कार्यरत हैं।
जैसा कि आप जानते हैं, मैं पिछले 5 सालों से टीसा से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा नाम अरुण कुमार है। मैं दिल्ली में रहता हूँ और अभी मैं सेंट्रल पुलिस फोर्स ATBP में सर्विस का कर रहा हूँ और मैं मैरिड पर्सन एंड माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड आई कंप्लीटेड माय बैचलर ऑफ साइंस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी।
आपका जो ITBP में आप जॉब करते हो, तो आपका वहाँ कैडर क्या है?
आई एम करंटली वर्किंग एज ए सब इंस्पेक्टर एट ITBP एंड करंटली पोस्टेड एट ओडिशा एंड माई आई एम एन GD कैडर। GD कैडर मीन्स जनरल ड्यूटी। इट बेसिकली फॉर द इंटरनल सिक्योरिटीज एंड द बॉर्डर गार्डिंग फोर्स एट चाइना बॉर्डर।
तो आपने ज्वाइन वहाँ पे सब इंस्पेक्टर ही किया था?
यस।
ठीक है, तो ज्वाइन करते वक्त कुछ दिक्कतें आई थी आपको? आपकी जब स्टैमिनिंग से रिलेटेड पूछ रहे हैं।
यस यस, आई विल स्पीक द ट्रूथ। जब मैंने इसका इंटरव्यू दिया था, मुझे रिटर्न में फिजिकल रिटर्न, उसके बाद इंटरव्यू, जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण स्टेज थी मेरे लिए, वो इंटरव्यू थी। और इंटरव्यू के दौरान जैसे ही मैंने SSC बोर्ड के, वहाँ पर 5 लोग थे, उसमें एक साइकोलॉजिस्ट और 3-4 जो सब्जेक्ट से रिलेटेड मेंबर्स थे जो कि इंटरव्यू ले रहे थे, तो मैंने एंट्री करने से पहले सबसे पहले यही बात बोली थी कि मैं हाँ हकलाता हूँ। तो उन्होंने बोला कि फिर उन्होंने बोला कि तुम ठीक बोल रहे हो, कोई बात नहीं, इससे हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारी बात एक्सप्रेस कीजिए जो भी आप बताना चाहते हैं। फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे और मैं उनका धीरे धीरे उनका जवाब देता चला गया, क्योंकि वहाँ पर एक्सेप्टेंस लेवल एक लेवल तक पहुँच गया था। मुझे लग रहा था कि जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि हाँ मुझे कभी कभी समस्या होती है, तो मैं वहाँ पर कंफर्टेबल था और मैंने वहाँ पर जो भी जवाब पूछे गए उनके जवाब दिए और काफ़ी अच्छा इंटरव्यू रहा।
अच्छा, आपको पहली बार कब पता चला कि आप स्टैम्प कलेक्टर, मतलब जब बचपन में पहली बार कब पता चला कि आपको स्टैम्प लेना है?
एक्चुअली आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट आई रिमेम्बर वन केस। जब एक मैं शायद 4th क्लास में था और हम 5-6 लोग थे जिनको कविता सुनानी थी, तो उसमें एक कविता थी, अगर यह कदम होता माँ यमुना तीरे, अगर यह कदम का पेड़ होता माँ यमुना तीरे। तो ये जब हम इसको सुना रहे थे तो मैं बीच बीच में उस लय को तोड़ रहा था, तो उस दौरान का मुझे एक सीन याद है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट इस बारे में मालूम नहीं है कि मैं कब से हकलाता हूँ।
अच्छा, तो बचपन में स्कूल लाइफ में आपको क्या क्या दिक्कतें होती थी आपस में इंटरेक्ट करने में, या स्कूल में जो और भी एक्टिविटी होती हैं उसमें?
बचपन में दिक्कतें होती थीं, सबसे पहली दिक्कत तो यही होती थी कि जैसे अपना अटेंडेंस है, रोल कॉल है, तो उसमें ज़्यादा दिक्कतें महसूस होती थीं और किसी भी तरीके से जो भी स्पीकिंग सिचुएशंस होती थीं वहाँ से पीछे हटने की कोशिश करके काम चलाता था कि इससे काम निकल जाएगा, और कुछ कुछ जैसे जैसे स्टेज बढ़ती गई तो थोड़ा इम्प्रूव करता गया।
अच्छा, फैमिली में आपका क्या चीज़ है, फैमिली वाले आपकी स्टैमरिंग को कैसे लेते हैं?
फैमिली वाले स्टैमरिंग को सिर्फ इतना ही लेते हैं कि ये सिर्फ अजनबियों के सामने डरता है और उस कारण हकलाता है, बाकी कोई समस्या नहीं है। क्योंकि तो अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं उनके सामने बातें करता हूँ तो न न न नहीं हाँ हकलाता हूँ, तो उन्हें लगता है कि ये सिर्फ डरता है बात करने से, तो उस वजह से हकलाता है केवल।
और कोई स्पीच थेरेपी भी क्या आपने कोई ली है?
मैंने स्पीच थेरेपी इन कॉलेज डेज में ली थी, तो वहाँ पर जैसे मैंने उसको ट्राई किया था तो कुछ दिन तक उससे काफ़ी अच्छा लगा था, लेकिन उसको मैं एक्चुअली वो ऐसी चीज़ थी कि मैं उसको रेगुलर डे टू डे लाइफ में नहीं कर पाता था, जिस कारण मैंने उसको धीरे धीरे छोड़ दिया। और आई थिंक मैं कहूँगा कि उसका टेम्परेरी इफ़ेक्ट ज़रूर था।
अच्छा,
लेकिन परमानेंट इफ़ेक्ट मुझे नहीं लगता कि उस थेरेपी से मेरे अंदर कोई आया था।
तो दोबारा थेरेपी लेने की क्या आपने दिमाग नहीं आया कि मैं दोबारा थेरेपी लूँ?
मैं उस बार थेरेपी लेने के बाद मैं काफ़ी लोगों से मिलता था, तो कोई किसी तकनीक के बारे में बताता था और कोई कुछ, तो मन में एक नई जिज्ञासा तो हमेशा लगी रहती थी कि कुछ ऐसी तकनीक मिले जिससे कि फलाना कम हो, या कोई ऐसी तकनीक बता दे कि जिससे शब्दों को निकालना आसान हो। लेकिन साल दर साल बीतते गए, टाइम बीतता गया, लेकिन मुझे नहीं लगा कि ऐसी कोई तकनीक मिली हो कि जो एकदम से उसको हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सकें। तो मैंने कोशिश की हालांकि स्पीच थेरेपी दोबारा से ज्वाइन करने की, लेकिन फिर मैं टीसा से जुड़ गया था, तो मुझे धीरे धीरे लगने लगा कि इसको प्रैक्टिकल सिचुएशंस में जाकर ही इसके लिए कुछ किया जा सकता है, अन्यथा थेरेपी का कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है।
टीसा से फर्स्ट टाइम एसोसिएट कैसे हुआ?
मैं टीसा से फर्स्ट टाइम आई वॉज चेकिंग ऑन गूगल हाउ टू क्योर स्टैमरिंग, देन आई फाउंड वन मेंबर फोन नंबर एंड द पर्सन वाज सचिन सर, एंड आई कॉल्ड हिम कि आई हैमरिंग प्रॉब्लम मैं हकलाता हूँ, तो क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? क्योंकि तो मैंने थेरेपी ली है और मुझे थेरेपी से थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन वो चीज़ व्यवहारिक नहीं हो पाती है, तो आप कुछ बताइए। तो मैं उनके पास देहरादून गया था, उन्होंने मुझे बताया कि इस तरीके से स्वीकार करना है और खुद से हकलाना है और ज़्यादा इसके पीछे भागना नहीं है। तो उस समय मुझे लगा कि ये तो और ज़्यादा हकलाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो इस वजह से मैंने वहाँ से अगले ही दिन मैं वहाँ से दिल्ली आ गया। मुझे और उस टाइम मैं काफ़ी छोटा भी था, छोटा क्या एक्चुअली मैं बाहर पहले कभी गया नहीं था दिल्ली से।
ये कौन से साल की बात है?
ये लगभग आई थिंक 2011।
यानी कि अब से लगभग 7 ईयर्स पहले की बात है।
यस। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे काम है, मैं उस टाइम मेरे लगभग 20 साल की एज थी लगभग।
तो उसमें वहाँ कोई वर्कशॉप हुई थी या आप वैसे ही मिलने गए थे?
मैं वैसे ही मिलने गया था उनसे, क्योंकि तो मुझे तो लगता रहता था कि कहीं से कुछ मिले और क्या पता कोई ऐसी जड़ी बूटी दे दे कि मेरा हकलाना ख़त्म हो जाए और मैं इतना प्रभावशाली बन जाऊं। क्योंकि एक यही ऑब्स्टेकल लगता था कि ये ठीक हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं ज़िंदगी में।
वहाँ से आके फिर आपने क्या किया?
वहाँ से आने के बाद फिर मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सोचा कि शायद वो थेरेपी से ही काम चलाना पड़ेगा। तो फिर उससे करता रहा, फिर काफ़ी दिनों के बाद सचिन सर से फिर बात हुई, लगभग एक महीने के बाद। तो उनसे फ़ोन से काफ़ी इंटरेक्शन होता था, लेकिन मैं उस चीज़ को मानता नहीं था कि एक्सेप्टेंस या बाउंसिंग या खुद से हकलाना भी कोई अच्छी चीज़ है हकलाने के लिए। लेकिन फिर मैं संडे को मीटिंग करने लगा दिल्ली SHG की, वहाँ पर भी लोग आते थे, वो अपना अपना बताते थे कि हमने ये किया वो किया, लेकिन वहाँ भी एक चाह बनी रहती थी कि कुछ कोई कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल दे, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ। अंत में आकर जब मैंने एक दो साल और गुजारे, तो मैंने सोचा कि स्टैमरिंग को ज़्यादा तकनीकों के पीछे भागकर या थेरेपी से मुकाबले अगर अपने डर के ऊपर और अपने खुलेपन के ऊपर ध्यान दिया जाए, खुलकर सामने आ जाए, तो कुछ ज़रूर रिलैक्स मिल सकता है। मैंने फिर धीरे धीरे लोगों के साथ जो सब्जी वाले होते हैं या रेडी वाले होते हैं या फिर कोचिंग सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर खुद से जाकर बोलना शुरू किया और उन्हें बताया कि मैं हाँ हकलाता हूँ और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, या वैसे ही कोई एड्रेस पूछा। तो उसके बाद लगने लगा कि इसमें मज़ा भी आता है और इसमें ज़्यादा कुछ रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि तुम्हें इस तरीके से बात करनी है, ऐसे रुकना है, इसमें जिस तरीके से हकला रहे हो उसी को रेगुलर रखना है। लेकिन जब आत्मविश्वास आया तो ये चीज़ें थोड़ी आसान बनती चली गई, इसी तरीके से बोल बोल के, जैसे कि मैंने खुद से हकलाया मेरा नाम अरुण कुमार है और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ऐसे मैंने कभी कभी बहुत बुरी तरह भी हकलाया। तो उससे लगा कि हकलाना उतना कठिन नहीं है कि जितना मैं सोचता हूँ, शब्दों से निकल सकते हैं अगर उस चीज़ के अंदर घुसो, ना कि उससे दूर भागने की कोशिश करो, तो काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है।
फर्स्ट टाइम जब आप वॉलंटियर स्टार्टिंग किया करते थे तो आपको कैसा फील हो रहा, कैसा फील करते थे?
जब मैंने स्टार्टिंग की थी वॉलंटियर स्टैमरिंग, तो मुझे लगता था कि ये तो और ज़्यादा हकलाने की तरफ ले जा रही है और काफ़ी डिस्टर्ब सा महसूस करता था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जब साल दर साल बीतते चले गए और मुझे लगा कि मैं उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाऊँगा जो ये स्लो बोलना है या फिर थेरेपी है, तो मैंने वो वॉलेंट्री स्टैमरिंग को बहुत अच्छे तरीके से अपनाया और मेरे को फिर इतना ज़्यादा, हालांकि कुछ जगह मुझे महसूस होता था, लेकिन जैसे नॉर्मली सिचुएशंस होती हैं, जैसे बाहर स्ट्रेंजर से या नॉर्मली, वहाँ पर मैं हकलाता था और खुलकर हकलाता था, और फिर मुझे इतना ज़्यादा वो फील नहीं हुआ कि मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ या मैं खुद से हकला रहा हूँ तो मैं क्या अपने हकलाने को बढ़ावा दे रहा हूँ। तो फिर मुझे काफ़ी अच्छा लगता चला गया और मैं अब भी उसी चीज़ को रेगुलर करता रहता हूँ, चाहे मैं फ्लुएंट बोलूँ लेकिन मैं हकलाता ज़रूर हूँ दिन में 2-4 बार, और वो काफ़ी ठीक रहता है मन।
आपने एक मीटिंग में डिस्कस किया था ऐसा कुछ कि आप एक दिल्ली में आपने एक SHG मीटिंग अटेंड की थी जिसमें सचिन सर होस्ट थे, अराउंड हमारी मीटिंग्स होती रहती है, आपने एक मीटिंग के अंदर ही शेयर की थी बात। तो मैं पूछना चाह रहा था कि जो सचिन सर जो होस्ट थे दिल्ली सेंट्रल बाग में मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के बारे में बताइए ज़रा।
एक जो मीटिंग हुई थी वो मीटिंग नहीं, एक्चुअली सचिन सर दिल्ली आए हुए थे, आई थिंक शायद वो वर्कशॉप थी, लेकिन उनके साथ सिकंदर जी थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सचिन जी आए हुए हैं और कनॉट प्लेस में आना है। तो मैं एकदम से तैयार हुआ और मैं भागा, मैंने कि शायद कुछ और सीखने को मिले, क्योंकि लालसा हमेशा बनी रहती है एक हकलाने वाले के लिए कि कुछ ऐसा मिल जाए। तो वहाँ पहुँचा पहले तो काफ़ी शर्मा रहा था और पीछे पीछे हट के चल रहा था, लेकिन जैसे ही सचिन सर से बातचीत हुई, उन्होंने भरे सेंट्रल पार्क में जहाँ के काफ़ी लोग थे, लड़कियाँ भी थीं, और लड़कियों के सामने मैं कभी बातचीत नहीं करता था। उन्होंने मुझे अपने से कम 10 से लेके 15 मीटर दूर कर दिया और बोला कि अब चिल्लाओ, यहाँ पर बोलो, अपना नाम बताओ, क्या है चिल्ला के, मुझे नहीं पता कैसे बताना है। और मैं उनसे काफ़ी दूर गया और मैंने पहले हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन फिर जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया मेरा नाम अरुण कुमार है, तो मुझे लगा ये तो बहुत ही आसान है, जिसको मैं हुआ बना के लगा हुआ था कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। और मैंने धीरे धीरे बड़े बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया और उस समय लगा कि यार ये चीज़ें करने से तो काफ़ी मज़ा आता है और काफ़ी ये तो बढ़िया चीज़ है, जिनसे छुप कर चल रहा हूँ उसको छुपाने में तो काफ़ी मेहनत लगती है, लेकिन इसको करने में कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं है। और उस दिन काफ़ी एक नई एनर्जी महसूस हुई कि ये काफ़ी बढ़िया है।
अच्छा, मेरे को बताइए कि जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे सीनियर से बात करने में आपको क्या क्या दिक्कतें आती हैं?
सीनियर से बात करने में एक्चुअली मैं अपने कलीग्स के साथ और जो मेरे जूनियर्स होते हैं उनके साथ मुझे स्वीकार्यता में और कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब मैं सीनियर्स के पास जाता हूँ तो शायद वहाँ मेरी स्वीकार्यता उस लेवल की नहीं होती और वहाँ मेरा प्रयास छुपाने का रहता है, जिस कारण ना तो मैं किसी तकनीक को फॉलो कर पाता हूँ और मैं काफ़ी जल्दी में भागता रहता हूँ, जिस कारण मुझे उनके इंटरेक्शन करने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है।
अच्छा, मेरे को एक चीज़ बता दीजिए कि आपने लास्ट मीटिंग में एक चीज़ शेयर की थी कि जब आप एक सेजन टॉक के लिए जा रहे थे तो आपके कलीग ने आपको रोका कि ये क्या बेकार की चीज़ करते रहते हो, और जब आप स्टेज टॉक के लिए वहाँ गए एक्चुअल में तो एक किसी पहले व्यक्ति से जब आपने बात शुरू की तो आपको तो जो दिक्कतें आई वो सारा किस्सा ज़्यादा शेयर करिए।
आपने जो पहली बात बताई कि जो मेरे साथ वाले हैं अगर मैं उन्हें बताता हूँ, यार अकलाने का ऐसा कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन अगर तुम लोगों से इंटरेक्शन करते रहो और स्ट्रेंजर से मिलो और उन्हें अपने बारे में बताओ तो इससे काफ़ी अच्छे लाभ होते हैं, जैसे कि जो मन का जो एक शब्दों के प्रति डर है या भागने की जो एक रहती है वो काफ़ी कम होती है, तो उन्हें लगता है कि यार तुम किसी डॉक्टर से मिलो वो तुम्हें अच्छा बताएगा, कोई दवाई देगा। उन्हें मैंने इस चीज़ को कई बार समझाया लेकिन उन्हें ये चीज़ फिर भी व्यवहारिक नहीं लगती कि हकलाने का कुछ वैसा इलाज होगा, कोई दवाई होगी या कोई ऑपरेशन होगा, उन्हें अब भी यही लगता है, लेकिन मेरा काम है उनको बताना, तो मैंने बताया उन्हें कि इसे इस तरीके से मैं अपने हकलाने को इम्प्रूव करता हूँ, लेकिन किसी की सोच को बदलना इतना आसान नहीं होता और ख़ासकर जो हकलाता नहीं है उसको तुम क्लेरिफाई नहीं कर सकते जिसके मन में ये बात। और दूसरी बात, एक किस्सा यह था कि मैं एक दिन ऐसे ही बातचीत करने के मकसद से मैं एक पार्क में पहुंचा जो मेरे ड्यूटी से लगभग 10 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ 2-3 लड़के बैठे हुए थे, क्योंकि मेरी अक्सर कोशिश रहती है कि जहाँ पर कम से कम 4 या 5 लोग हों वहाँ पर मैं बातचीत करूँ, क्योंकि सिंगल पर्सन ये काफ़ी टाइम हो गया इस चीज़ के लिए। तो वहाँ पर पहुँचा तो मैंने उनसे पूछा कि भाई मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहता हूँ, और मैं हकलाता हूँ कि आप बात करोगे, तो जैसे तैसे तैयार हो गए, लेकिन उसमें एक लड़का काफ़ी विरोध कर रहा था कि नहीं मतलब क्यों बात करनी है, या 2 मिनट में हकलाता हूँ, थोड़ा प्रैक्टिस करनी है ऐसी। तो जैसे तैसे वो तैयार हुए तो फिर उनसे जैसे बातचीत की, यार ये आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जो कि हकलाता हो, तो उसके मन में इतनी विरोध भावना उत्पन्न हो गई, उसने कहा कि आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो, यहाँ तो और भी सैकड़ों लोग मौजूद हैं, तो आप हमारे पास ही आके क्या ले रहे हो। मैंने उसे फिर समझाया कि यार मैं तो, आप खाली थे और थोड़े बिजी हैं, मुझे लगा आपसे बातचीत। लेकिन जब उनका ज़्यादा विरोध हुआ तो मैंने उन्हें समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं आपको स्पेशल पकड़ के बैठा हुआ हूँ, अगर आप समय नहीं दे सकते तो आप मना कर सकते हैं, ऐसी कोई जोर या जबरदस्ती नहीं है। तो मैंने फिर उन्हें छोड़ा और मैं फिर किन्हीं और के पास चला गया। उन्होंने, मैंने भी कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो ऐसी परिस्थितियां कई बार आती हैं कि लोग बुरा मानते हैं, तो उस चीज़ को माइंड नहीं करना है, अपना आगे चलते रहना है।
आपका एक्सेप्टेंस लेवल कितना होगा आज डेट में?
अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो मेरा एक्सेप्टेंस लेवल मतलब 60-70% के बीच में है। अभी मुझे अभी लगता है कहीं ना कहीं मैं 20-30% अपने एक्सेप्टेंस लेवल को 100% तक नहीं ला पाया हूँ, ऐसा मुझे लगता है।
अच्छा, आप स्टैमिना से रिलेटेड कोई भी बात फैमिली मेंबर्स में या रिलेटिव्स में या दोस्तों में खुल के बात कर पाते हैं?
हाँ, अब मैं खुलकर बात कर पाता हूँ और उन्हें बता भी पाता हूँ कि यार जो समस्या है वो है। उसे कई बार मेरे ताऊ जी हैं, वो कहते हैं अरे तू डरता क्यों। मैंने कि जो नेचुरल है वो होता ही है, कभी कभी समस्या आती है तो आती है, और हकलाता हूँ लेकिन मैं अपनी बात समझा लेता हूँ धीरे धीरे।
आप पिछले 7-8 साल से टीसा से जुड़े हुए हैं, तो आपने पिछले 7-8 सालों में टीसा में कुछ बदलाव देखा, क्या इम्प्रूवमेंट देखा या क्या चेंजेस हुए दिल्ली एसएचजी में और टीसा में?
टीसा में बदलाव तो काफ़ी हुए हैं, क्योंकि ये काफ़ी अपर लेवल तक आया है। पहले जो एक जैसे कम्युनिकेशन का साधन पहले सिर्फ 1-to-1 था, तो अब उसको सोशलाइज ज़्यादा कर दिया गया है, जैसे कि यूट्यूब के थ्रू नए नए कोर्स चलाए गए हैं, मूक के थ्रू जैसे कि मैंने ऐसा सुना है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, उसमें काफ़ी कुछ बताया जाता है जो कि नए मेंबर्स हैं जिन्हें इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, और जिन्हें फैलाने या स्पीच थेरेपी के उन्हें पता नहीं है कि कहाँ से किस तरीके से इसको उपलब्ध कराया जा सकता है। तो उनके बारे में पहले ये चीज़ें नहीं थी, पहले वो एक सर्टेन लेवल तक ही जुड़ी थी, जो कि उस इन्फॉर्मेशन को फैलाने का माध्यम नहीं था। लेकिन अब टीसा ने फेसबुक के थ्रू और अपनी वेबसाइट्स, और आजकल दिल्ली में तो देखते ही हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप भी काफ़ी एक्टिव रहता है, और उसका सोशलाइजेशन का काफ़ी ज़्यादा हो गया है, जो कि काफ़ी लोगों तक टीसा की बात पहुंच पा रही है।
कोई टेक्निक आप यूज़ करते हैं?
तकनीक तो यही यूज करता हूँ जो मैं कर रहा हूँ, ऐसी यही तकनीक है जो कि बाउंसिंग है जिसका नाम, जिसमें कि शब्द की पहली ध्वनि को दोहराते रहो, कभी तेज़ दोहराओ, कभी बीच बीच में रुक कर दोहराओ। मतलब ये नहीं सोचना कि मैं इस तकनीक से बंधा हुआ हूँ, जो तकनीक बहुत ही आराम से आप लोगों के बीच यूज कर पाओ वो इफ़ेक्टिव है, लेकिन मैं बाउंसिंग का ही यूज करता हूँ ज़्यादातर, और कभी कभी वो वॉलंटरी स्टैमरिंग का यूज़ करता हूँ।
अच्छा, आपके घर में कोई बंदा है जो जिसको स्टैमरिंग हो, आपकी फैमिली में, रिलेटिव में, या आपके दादा दादी या फादर मदर में?
मेरी फैमिली के अंदर मेरी नॉलेज में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि हकलाता हो। हाँ, मेरे सामने हैं एक अंकल जी, वो जरूर हकलाते हैं, और उनसे मैंने इस बारे में बात भी की थी, लेकिन उन्होंने इस बारे में ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई और बोला ये हो जाता है, चलता रहता है।
तो वो आपके रिलेटिव हैं या?
वो मेरे रिलेटिव नहीं हैं, वो नेबर।
नेबर, अच्छा अच्छा। बाकी टीसा में एसोसिएट होने से पहले क्या कोई ऐसा बंदा आपको मिला है जिसको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम रही हो, या ऐसे बंदे से मिले हो जिनको स्टैमरिंग दिक्कत हो, उन अंगों को अगर छोड़ दे दो?
टीसा
में अटैच होने से पहले किसी ऐसे बंदे से मिले जिसको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम रही हो, स्कूल में, रिलेटिव में, दोस्तों में?
स्कूल में मेरे साथ था एक लड़का, लेकिन वो बोलता रहता था। मैंने उसकी एक खासियत देखी थी, वो लड़का भी अकलाता था लेकिन वो रुकता नहीं था, वो तो अपनी बात को पूरी करता ही था।
हाँ भाई, आठ बीस
तो मैं उसी को जानता हूँ वैसे। और भी थे एक दो गांव में, लेकिन कभी इस बारे में उनसे बातचीत नहीं की थी।
अच्छा, बाकी ऑफ जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पे अगर आपको स्टैबिंग होती है तो आप उसका सामना कैसे करते हैं?
अगर मुझे स्टैमरिंग होती है तो मैं उसका सामना अभी फ़िलहाल तो उसको दिखा कर ही करता हूँ, उसको एडवर्टाइज करके। अगर मुझे हकलाहट होती है तो वहाँ पर मैं खुद से हकलाने की पहले से ही प्रैक्टिस कर देता हूँ कि मैं हकला रहा हूँ, और मैं वहाँ पर रुक जाता हूँ और रुक कर हकलाता हूँ, जिससे कि उस ब्लॉक से निकलने में आसानी होती है।
कोई सजेशन है आपका PWS यानी स्टैमिनर भाइयों के लिए या फिर टीसा के लिए?
टीसा ने तो ऑलरेडी इतना कुछ बताया है, तो उसके लिए तो ऐसा कोई जहाँ जो PWS हैं, जो नए मेंबर हैं, जो अभी भी अंधभक्तों की तरह थेरेपियों के पीछे लगे हुए हैं, तो उन्हें मेरा सजेशन यही है कि वो खुलकर स्वीकार करें कि मैं हकलाता हूँ, क्योंकि इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इसके व्यवहारिक कोई और चीज़ होगी। और उसके बाद जिस भी तकनीक को आप उपयोग में लाना चाहते हैं आप ला सकते हैं, लेकिन जो मेरा फॉरमोस्ट है वो स्वीकार रहता है, और स्वीकार रहता के बाद खुलकर हकलाने के लिए छोड़ दो अपने आप को, ये मेरा सजेशन है। उसके बाद किसी तकनीक के ऊपर जाओ।
अच्छा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मिस्टर नरेंद्र कुमार जी। थैंक यू,
बहुत धन्यवाद।
थैंक मेक ह्यूमंस ऑफ टीसा।
बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा इससे जुड़कर।
थैंक यू।